आइए अब सूरत यूसुफ को लेते हैं, है तो कहानी कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा, ये इस किताब की आयात है जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है, यानी किताब कुरान को किसी और डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती समझने के लिए सिवाय सुन्नत की डिक्शनरी के। हमने इसे नाजिल किया कुरान बनाकर अरबी जुबान में ताकि तुम अहले अरब इसको अच्छी तरह समझ सको। क्या पता चला? किताब को अपनी जुबान में समझना लाजिम है। चूंकि अरबों में उतरी तो अरबी में थी, तो उर्दू वाले लोगों को उर्दू में पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज इस किताब का मकसद हासिल नहीं होगा। ए नबी, हमने कुरान को आपकी तरह वही करके बेहतरीन पेराय में वाक्यात और हकायक आप पर बयान किए, वरना इससे पहले तो आप इन चीजों से बिल्कुल ही बेखबर थे। ये उस वक्त का जिक्र है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। जवाब में उनके बाप ने कहा, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना, वरना वो आपको तकलीफ देने पर आ जाएंगे। हकीकत यह कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है और ऐसा ही होगा जैसा कि आपने ख्वाब देखा है। आपका रब आपको अपने काम के लिए मुंतखब करेगा और आपको बातों की तह में पहुंचना सिखाएगा और आपके ऊपर और आले याकूब पर अपनी नेमत पूरी करेगा, जिस तरह इससे पहले वो आपके बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक पर कर चुका। यकीनन आपका रब अलीम और हकीम है। हाईलाइट कीजिए हजरत याकूब की ये प्यारी सी नसीहतें आयत 6 में जो उन्होंने की हैं। ये है आज के वेस्टर्न बाप को अपने बेटे को करने वाली नसीहत। क्या आपको भी बेटा अल्लाह चुनेगा? आपको भी अल्लाह हिकमत देगा, फरासत देगा, मामला फहमी देगा। इंसान जितने भी ओपन माहौल में रहता है ना, उतना उसका जहन ज्यादा काम करता है। नैरो बर्तन होगा, थोड़ी सी चीज डलेगी, बर्तन भर जाएगा। बड़े बर्तन में जितना भी डालते जाए जज्ब करेगा। वो बच्चे जो घुटे हुए तंग माहौल में रहते हैं ना, उनकी स्किल्स घुट जाती हैं, तंग हो जाती हैं। जो लोग पैदा हों और उनके हाथों में गैजेट्स पकड़ा दिए जाएं, कंप्यूटर्स पे वो काम करें और जहां हर चीज को ओपन करके और कहा जाए कि यू आर कॉन्फिडेंट और यू आर एट योर ओन, ऐसी औलादें और ऐसी नस्लें मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं। हकीकत में उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है। बच्चे को आप जितना ज्यादा रिस्क फ्री पालेंगे ना, वो उतना ब्रेव होगा, उतना ताकतवर होगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का यहाँ हजरत यूसुफ के साथ एक डायलॉग हमने पढ़ा। चंद बातें इसमें से नोट कीजिए। पहली बात यह कि माँ बाप और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हजरत यूसुफ ने अपना असली ख्वाब बाप से शेयर किया। इसी तरह आज हमारे बच्चों को अपने ड्रीम्स, अपने व्यूज, अपनी पसंद, अपनी नापसंद हमारे से शेयर करने का हक होना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे माँ बाप से बातें नहीं करते, माँ बाप के साथ बातें नहीं शेयर होती उनकी, तो फिर वो दूसरों से करते हैं, फिर बाहर जाती हैं, फिर खराबियां होती हैं। तो आपका मेरा फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ वन ऑन वन बेस पे ताल्लुक रखें। मैं अक्सर माओं की नसीहत करती हूँ इसी बात की, कम अज कम 15 मिनट आपने अपने हर बच्चे को अलग से दे लें। बस अगर आपके 4 बच्चे तो आप 24 घंटे में से 15-15 मिनट करके 1 घंटा कैसे स्पेंड करें? 1 घंटा मुन्ने के साथ, 1 घंटा चुन्ने के साथ और 1 घंटा मुन्नी के साथ और 1 चुन्नी के साथ। इंसान जो है ना, उसके अंदर उनस है, जानवर हो या इंसान हो, बच्चा प्यार चाहता है। जब हम अपने बच्चों को अलग से टाइम देते हैं, उनको लम्स करते हैं, उनको प्यार करते हैं, बहुत छोटे बच्चे से ये शुरू करें, प्यार करें, उसके बालों को छुएं, उसके पाँव को छुएं, आप फील करेंगे कि वो आपकी कुर्बत पाता है। और हम तो उसको इतने कपड़े पहना देते हैं, वो नीचे गिर भी जाए तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर कपड़े इतने और फिर माएं उनके हाथ बांधती हैं। आप कभी नॉर्वे में देखा करें, जब बच्चे बाहर जाते, बिलीव भी वो प्लास्टिक के बैग लगते हैं। एक बच्चा एक दफा सो टेबल पे माँ ने उसको रखा, स्कूल के टेबल पे उसको पैक वुक कर चुकी थी माँ, इधर वो बच्चा पूरा लुढ़क पुढ़क के नीचे गिरा, उसको कुछ भी नहीं हुआ माशाल्लाह, क्योंकि वो चारों तरफ फॉर्म की जैकेट और हाथों पे ग्लास पहनाती हैं, बाल कानों पे उंगलियों पे छोटे छोटे पता नहीं क्या कुछ पहना के उनको बढ़ावे से बना देती हैं। तो वो बच्चों को कुछ नहीं होता। अपने बच्चों के साथ बेतकल्फी करें, ये आज के दौर का एक बहुत मसला। वो कब जागते हैं, वो कब सोते हैं, ये आपको बताना चाहिए। आज उम्मते मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे अपने बच्चों के साथ बीच में हमारी एक लाइन खिंच गई। माइंड ना कीजिएगा, मैं नहीं कहती कि ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन उनके रवैये से लगता है कि वो आपको कुछ नहीं समझते। इनको क्या समझ आता है? अम्मी इनको क्या आती, इंग्लिश आती नहीं। और अब्बू इनको क्या आता है? इनको तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, और आपको तो आईपैड ही नहीं यूज करना आता, और आप तो बस कभी नहीं सीखेंगी फोन, और आप तो हमेशा गलत ही बटन दबाती है। अंदर से एक ऐसी रौनक है। मुझे यूथ बहुत अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते होंगे, लेकिन जो बच्चे आपको आगे से रिस्पॉन्स ना दे माजरत के साथ, मैं उसको एटीट्यूड कहती हूँ कि आप इस काबिल नहीं है कि आप उर्दू बोलने वाले से ठीक बात करें। एक गैप डाल दिया, लैंग्वेज बैरियर है, बच्चे उर्दू नहीं समझते। बच्चे आपको कब अपने ख्वाब सुनाएंगे, कब शेयर करेंगे? जब आपकी जुबान उनकी एक होगी। एक कमी जो मैंने खुद पिछले 15 साल में ऑब्जर्व की है, जो वेस्ट में रहने वाले पेरेंट्स की हुई, आप गौर करो इनके मैं जो बात कहने लगी हूँ। माँ बाप उर्दू बोलते हैं या कुछ भी, मैं सिर्फ इस वक्त उर्दू के हक में नहीं हूं, मैं बीच के कम्युनिकेशन की बात हूं। बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो माँ बाप समझते हैं, माँ बाप उर्दू बोलते हैं तो बच्चे उर्दू समझते हैं, लेकिन बच्चे उर्दू बोल नहीं सकते, माँ बाप इंग्लिश बोल नहीं सकते। क्या आज बहुत सारे घरों में ऐसे नहीं है? हुआ क्या कि बच्चा इंग्लिश में स्कूल की बातें सुनाता रहा, माँ उर्दू बोलती रही, बच्चे को माँ की उर्दू समझ आ गई, लेकिन वो जवाब इंग्लिश में देता रहा, माँ को इंग्लिश सुननी आ गई, बच्चे को उर्दू सुननी आ गई। इट्स नॉट द राइट वे। देखिए ये जो कोई कहता है ना उर्दू इज अ डाइंग लैंग्वेज, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है खतरे का। मैं नहीं कहती कि उर्दू अच्छी है और उर्दू पढ़ने से आपके बच्चे नेक हो जाएंगे, लेकिन मानिए ना मानिए, हम सब जिस खमीर से उठते हैं हम उसी में क्लोजनेस फील करते हैं। कभी अपने बच्चों को अपनी जुबान से ना काटें। फिर दूसरी बात, आप देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो ख्वाब दिखाया, उस ख्वाब की ताबीर कितनी खूबसूरत की बाप ने, कि बेटा अल्लाह आपको बहुत बड़ा बनाएगा। आज वल्लाही कसम नहीं खाना चाहती, लेकिन आज हमें अपने बच्चों को यही ड्रीमिंग करवाने की जरूरत है। उठते बैठते प्यार से, जवान होते छोटे बड़े बच्चों को यही कहें जो हजरत याकूब ने कहा कि वकजालिका यजतबीका रब्बुका, मेरा ये बच्चा है वो अल्लाह इसको देखना चुनेगा। अपने बच्चों का मोरल बुलंद करें। बाज दफा हम बचपन में चूंकि बहुत लाड देख चुके होते हैं, फिर हम थक चुके होते हैं और वो हमारे हाथ से निकल गए। इधर वो जवान हुए झूम के, उन पर टीन एज आई, उधर वो हमारे हाथों से निकल गए, तो फिर अखीर उठते बैठते हम उनको सलवातें सुनाते हैं। तुम बिगड़े हुए, नमाज पढ़ लिया करो, कपड़े ठीक करो, ढंग से पहनो, सही बैठो, इधर रहो, साथ बैठा करो, चलो हमारे साथ। फिर वो जो 2-4 कड़वे जुमले बोल के माहौल खराब करके घर से निकलते हैं, तो बच्चे भी खुश नहीं, आप भी खुश नहीं है। इसको चेंज करने की जरूरत है। अपने बच्चों को रोज 15 मिनट माएं ख्वाब दिखाएं, हर 15 मिनट में किसी एक मुस्लिम हीरो से उनको मिलाएं, फिर आप देखिए आपके बच्चे कैसे चेंज लाते हैं। स्कूलों में कितनी कुतेह रहते हैं बच्चे, और कितना कुछ पढ़ाना होता है स्कूल वालों ने। आप माँ वो सिखा सकती हैं जो दूसरे नहीं सिखा सकते, तो बच्चों को ड्रीमिंग करवाएं। फिर युअल्लिमु कमिन तावील इल हदीस, ये मेरा बच्चा बहुत जीनियस बनेगा, इसको देखना अल्लाह ताला वो ब्रेन देगा कि जिससे होगा। आप अपने बच्चों की स्किल्स को आगे लाएं। आप समझते हैं ना आपका बच्चा 8 साल का है, तो बिलीव मी आज के दौर में आप उसको कम अज कम 10 साल का सोचे, और आपको लगता है आपका बच्चा 12 साल का है, आप उसको 14-15 का सोचे, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा उनकी ग्रूमिंग हो रही है। दुनिया ने तो उनको वक्त से पहले वो सब दुखा और सुना दिया जिसकी जरूरत उनको कहीं जाके शादियों के बाद पड़ती। तो आपके बच्चे छोटे नहीं है, आज हमें जरूरत है इस बात की कि उनको ऊपर लेके चलना है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक आइडियल बाप की सूरत में, और मैं कहती हूँ आज के बाप अगर याकूब अलैहिस्सलाम को रोल मॉडल बना लें तो 50-60 साल की बात है, एक जनरेशन गुजरेगी तो उम्मत मुस्लिमा का नसीब ऐसे ही बदल जाएगा जैसे हजरत यूसुफ और याकूब और उनके हालात बदलते हुए दिख रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम इन चीजों को लेकर चले। फिर उसके बाद देखिए कि इसमें इन्होंने अपने बच्चों को ये क्यों कहा कि अपना ख्वाब दूसरों को न सुनाना, और आने वाले किसी खतरे से डराना और आगाह करना ये माँ बाप का फर्ज है। आप अपने बच्चों से जितने मर्जी बेतकल्लुफ हो, जितना मर्जी आप उनके साथ अच्छा मामला करें, लेकिन एक डिस्टेंस जरूर रखें। आप कब पर हैंड, अगर वो 49 है तो 51 पे रहे। आज ये भी एक बहुत मसला हो गया, हमने बिल्कुल बराबर पे खड़ा कर दिया, बल्कि ऊपर है बच्चे, वल्ला ही गलत ना मैं कहूं तो। आज हम अपने बच्चों से डरते हैं, बच्चे हमसे कम डरते हैं। आज हम सारा दिन उनको खुश करना चाहते हैं, पहले बिल्कुल अपोजिट हालात थे। मैं इसको पेरेंटिंग में नहीं लेके जा रही क्योंकि वहां हमने बहुत डिटेल से इसको हर एंगल से देखा हुआ, लेकिन फिर वही कहूंगी कि आज के लाइफस्टाइल में ये लाजिम है कि आप अपने आप को बच्चों से एक हैंड ऊपर रखें। कुछ भी है, एक बच्चा ऐसी कोई बात कर रहा था, दिस एंड दैट, अम्मी दिस वो, तो मैंने एक जुमला बोला उसके सामने, बेटा आप कितने भी सच्चे क्यों ना, कितने भी स्किल्ड ना हो, मैंने उसकी माँ से पूछा जब ये पैदा हुआ था आप कितने साल की थी, कहने लगी 18 साल की थी, पहला बच्चा था उनका। मैंने कहा बेटा यहां बैठ के इस बात पे गौर करो, आप अपनी अम्मी से 18 ईयर्स छोटे हैं। क्या ये बात काफी नहीं है आपकी अम्मी के अकलमंद होने की या आपसे बड़े होने की? बच्चा खामोश हो गया। अपने बच्चों को एहसास दिलाएं कि हम आपसे 15-20 साल पहले इस दुनिया में आए थे। जब हम बुद्धू बन जाते हैं और हम भी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, हाँ हमें इंग्लिश नहीं आती इनको आती है, हमें कंप्यूटर नहीं चलाता आता इनको आता है, ये वेस्टर्न स्कूलों में गए हम तो बितारे पता नहीं किन गवर्नमेंट के स्कूलों में गए, इस कॉम्प्लेक्स को निकाल दें तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे फायदा होगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि अब आगे से असल किस्सा शुरू होता है, और वो क्या है, इस कालू लयूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना। हकीकत ये है कि यूसुफ और इनके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानी है। ये पूछने वाले कौन थे? मदीना के लोग। उन्होंने अल्लाह के नबी को आजमाना चाहा था कि भला ये नबी हैं कि नहीं, क्योंकि हजरत यूसुफ का किस्सा मक्का में कोई नहीं जानता था। अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल करके उनको यकीन दिला दिया कि ये अल्लाह के नबी हैं। फरमाए इसमें निशानियां हैं पूछने वालों के लिए। ये किस्सा यूं शुरू होता है कि इनके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ और इसका भाई दोनों हमारे वालिद को हम सबसे ज्यादा महबूब हैं। ये गुमान हर बच्चे को होता है। देखिए आपका जब सेकंड बच्चा होगा ना, तो उसको पहले बच्चे को फील होना शुरू हो जाएगा कि ये मेरे जगह पे आ गए। आप नोट करें जब घर में छोटा बच्चा आता है ना, तो पहला बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको खींच के गोद से निकाल के खुद जाके बैठ जाएगा, अक्सर उसका फीडर लेके पीना शुरू हो जाएगा, माँ उसको पकड़ेगी तो बच्चा रोता है। ये एक फितरी सी बात है। हजरत यूसुफ के जो दूसरे भाई थे उनको जो बात लगी वो हकीकत नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि अब्बा हमसे ज्यादा प्यार नहीं करते, हालांकि हम एक पूरा गिरोह हैं। ये सोचते कि अब्बा को इनसे प्यार क्यों है। आज भी देखिए जब आपको कभी ये लगे ना कि मेरे से ज्यादा अम्मी दूसरी बहन को प्यार करती हैं या मेरे से ज्यादा अब्बू दूसरे भाई को प्यार करते हैं, तो ये सोचिए कि उसमें खूबी क्या है। आप खुद माएं, आप इस बात की गवाही देती है ना, सारे बच्चे आपके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किस बच्चे में दिल पड़ा रहता है? जो बादब है, जो बानसीब है, जो अच्छी तरह बात करता है, टिकेट अच्छे है उसके, तो हमेशा इंसान अपने एटीट्यूड और अपने रवैयों से मोहब्बत लेता है। लेकिन शैतान उस वक्त दूसरों को सामने खड़ा कर, बिल्कुल वही कहानी है जो हाबील और काबिल की थी, कि अपने ऊपर नजर डालने की बजाय दूसरी की तरफ कर दी। आगे आप इनका एटीट्यूड खुद ही देखेंगे कि उनको इन सारी चीजों में क्या वजह थी कि वो इस चीज को महसूस करते, क्योंकि उनका अपना अखलाक अच्छा नहीं था। सच्ची बात है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। हाईलाइट करें, आप इस इंग्लिश को कैसे कहेंगे? माई डैड इज स्टुपिड। मैंने ये जुमला एक बच्ची के मुंह से सुना है, माई मॉम इज स्टुपिड। तो माँ को चूंकि इतना लगता ही नहीं ये बुरा लफ्ज है, वो कहती है सो के को अच्छा ही लफ्ज बोला होगा, इंग्लिश का लफ्ज है। यकीन करें ये जरूरत नहीं देनी चाहिए, माई मॉम इज सो मीन, ये बच्चे लफ्ज बोले तो ये खतरा, ये बदबख्त बच्चे होते हैं। क्योंकि बच्चा तो माँ बाप को क्या कर सकता है कि वला तकुल लहुमा उफ, उफ भी नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी दुनिया के लीडर बन जाएं, माँ बाप के लिए आप बच्चे ही हैं। तो लिहाजा ये उनकी अपनी आदतें बता रही हैं कि वो कैसे थे। सच्ची बात तो ये कि हमारे अब्बा जान तो बिल्कुल ही बहक गए हैं। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या इसको कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन जाना। प्लान क्या किया? यूसुफ को कत्ल कर दो। क्यों? ताकि फिर बाप हमसे ज्यादा प्यार करे। बाप की मोहब्बत उससे दूर करो ताकि वो हमसे प्यार करे। आज भी बहुत सारे लोगों को यही गलत फहमी है, और कई लड़कियां शादी के बाद ससुराल में जाकर यही जुल्म करती हैं, शौहर की मोहब्बत लेने के लिए उसको उसके घर वालों के खिलाफ करना चाहती हैं, और वो सोचती हैं सास को बुरा बना दो, नंद की बुराइयां करो, तो मेरा शौहर ना माँ को मिले ना बहन को मिले, वो बस सारा मेरा ख्याल रखे। तो याद रखिए, नफरतें देके कभी मोहब्बत नहीं मिलती। दूसरी बात, आप देखिए इस जुमले को हाईलाइट करके 3 सेकंड तक इस पे गौर करते हैं, और वो क्या कि इतना बड़ा जुर्म के भाई को कत्ल करें तो इसका बोझ दिल पे पड़ेगा, तो क्या बड़ी बात है। वतकून मिन बादिही कौमन सालेहीन, क्या फर्क पड़ता है, भाई को कत्ल करो बाद में जाके नेक बन जाना, हज कराना, उमरा कर लेना, तौबा कर लेना। आज उम्मत मुस्लिमा का भी यही हाल है, बड़े बड़े गुनाह करने के बाद क्या सोचते हैं, चलो बाद में नेक बन जाएंगे। कई लोग हैं, कुछ नहीं होता, अब रमजान आने वाला एक ही बार नमाजें शुरू करेंगे, आप रमजान में बहुत पढ़ ली, देखिएगा जैसे चांद डूबता है इस तरह रमजान के बाद लोग भी डूब जाते हैं, मस्जिदें खाली हो जाती हैं, नमाजी कम हो जाते हैं। तो मुस्तकबिल में नेक बनने की नीयत से आज गुना करना, ये भी एक शैतानियत की बात है। फिर इनमें से एक बोला, यूसुफ को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो इसे एक अंधे कुएं में डाल दो ताकि कोई आता जाता काफिला इसको निकाल ले। क्या पता चला कि जहां बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हों वहां अल्लाह ज्यादा बुरों में कुछ कम बुरे को पेश कर देता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि प्लान्स क्या किए हजरत यूसुफ के कत्ल के, और बात क्या कर रहे हैं, अब जरा सुनिएगा, बाप के सामने आ रहे हैं कि क्या डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उनकी।